आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2027 में देश में पहली बार कराई जाएगी डिजिटल जनगणना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दो चरणों में पूरी कराई जाएगी प्रक्रिया, दूसरे चरण में होगी जातिगत गणना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में रबी सत्र की किसान पाठशाला का किया शुभारंभ। 29 दिसंबर तक सभी जनपदों में किसान पाठशाला का होगा आयोजन। SIR अभियान की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने यूपी समेत 8 प्रदेशों में तैनात किए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक। और काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु से छठा प्रतिभागी दल पहुँचा काशी। पांचवें दल के सदस्यों ने प्रयागराज पहुँचकर संगम में लगाई डुबकी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जनगणना 2027 के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव के अनुसार 11,718 करोड़ रुपए की लागत से देश में पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। उन्होंने बताया कि पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इसी चरण में जातियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी शामिल किया जाएगा।
सेंसस दो फेजेस में होगा। फेज वन में फोकस रहेगा हाउसहोल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी द बेस फॉर फेज टू, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा भारत के कानूनों के हिसाब से।
उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर के बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे चरण में जनगणना सितंबर 2026 में होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि जनगणना में लगभग 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने कोयला लिंकेज नीति कोल सेतु में सुधारों को भी मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार 29 दिसंबर तक सभी जनपदों में किसान पाठशाला का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी के दौलतपुर गांव में रबी सत्र की किसान पाठशाला का कल शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कृषि प्रगति, बहुफसली खेती, तकनीकी नवाचार, MSP व्यवस्था की पारदर्शिता और किसानों की आय वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई भौगोलिक जलवायु क्षेत्र हैं, जिनके अनुरूप उन्नत बीज और तकनीक उपलब्ध कराने पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले की तुलना में आज रिकॉर्ड उत्पादन और पारदर्शी व्यवस्था ने प्रदेश की प्रगति को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि विकास दर 8.6% से बढ़कर 17.7% तक पहुँच गई है।
पिछले 8 वर्ष में कृषि विकास की दर को 8.6% से बढ़ा करके 17.7% उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। गेहूं उत्पादन में 35% योगदान उत्तर प्रदेश देश के अंदर दे रहा है, जो देश में प्रथम है। कुल राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 21% है। देश के कुल गन्ना उत्पादन का 55% अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश इसमें भी देश में नंबर 1 पर है।
प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल लखनऊ में आयोजित विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर राज्य स्तरीय विचार मंथन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश को विकसित बनाने के लिए युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा।
प्रधानमंत्री जी ने जब 2020 के लिए NEPI राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसमें स्किल को एक बड़ी मान्यता, बड़ा स्वीकारता और बड़ा आशीर्वाद देगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी युवाओं की क्या परेशानी है, इंटरमीडिएट कॉलेज में क्या क्या दिक्कत होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या दिक्कत होती है, जो बच्चे MBA कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स है, और पढ़ाई के साथ साथ कैसे स्किल हो, उसके लिए योजना यहाँ पर तैयार हो रही है। सब लोगों का विजन, तैयारी, विचार ऐसा करके डॉक्यूमेंट उसका तैयार होगा।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 8 प्रमुख राज्यों में विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक की तैनाती की है। ये पर्यवेक्षक SIR का काम खत्म होने तक इन सभी राज्यों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन रहेंगे। इस दौरान पर्यवेक्षक गलती से छूटे हुए मतदाताओं का नाम मसौदा सूची में जुड़वाने और अयोग्य का नाम सूची में जुड़ने न पाए, इस पर विशेष नजर रखेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से 6ठा प्रतिभागी दल कल काशी पहुंचा। इस दल में प्रमुख रूप से महिलाएं शामिल हैं। तमिलनाडु से आए इस दल ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। समूह के सदस्यों को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विस्तृत भ्रमण कराया गया, जिसमें उन्हें धाम के ऐतिहासिक स्वरूप, स्थापत्य कला, नव निर्मित सुविधाओं की जानकारी दी गई। अपने काशी प्रवास के दौरान तमिलनाडु से आए ये अतिथि शहर के प्रमुख सांस्कृतिक और शैक्षिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी आने वाले अतिथियों को अयोध्या और प्रयागराज की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराया जा रहा है। इसी क्रम में पर्यटक दल का 5वां जत्था कल प्रयागराज पहुंचा। एक रिपोर्ट।
काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु से आए 5वें दल में लगभग 210 लोक कलाकार और व्यवसायी शामिल हैं। प्रतिभागियों का यह दल प्रयागराज में संगम की आभा देखकर प्रफुल्लित नजर आया। त्रिवेणी संगम के VIP घाट पर महापौर उमेश गणेश संत के सरवानी ने पर्यटक दल पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। महापौर ने इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने वाला आयोजन बताया। इस मौके पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दल के सदस्यों ने कहा कि इस आयोजन में उन्हें प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने और यहाँ की संस्कृति को समझने का मौका दिया है, जो उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अटल इंक्यूबेशन केंद्र में चल रहे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 हार्डवेयर संस्करण का कल समापन हो गया। हैकेथॉन के अंतिम दिन सभी टीमों ने अपने नवीन हार्डवेयर प्रोटोटाइप पर सक्रिय रूप से काम किया और क्षेत्र विशेषज्ञों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को अपनाया। इस प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों ने बताया कि वे अपने नवाचार के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बरेली से आई त्रिशा ने अपनी टीम द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी साझा की।
ये एक रोबोटिक क्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम क्लोरोफिल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो भी प्लास्टिक है वो सब हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और ये क्लोट करके वहाँ डिटेक्ट करेगा कि उसमें कितना कंसंट्रेशन है क्लोरोफिल का और माइक्रो और मैक्रो प्लास्टिक का। ये सारे मेरे टीममेट्स हैं और हम सब ने बहुत हार्डवर्क किया है यहाँ तक आने के लिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आज और कल 2 दिनों में पूरी होगी। इसी क्रम में कल मतदाता सूची जारी कर दी गई, जिसमें 464 मतदाता हैं। इनमें 5 सांसद, 26 MLA, 8 MLC और 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य तथा जिलाध्यक्ष शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की देखरेख में आज नामांकन पत्र दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। अगले 1 घंटे में नाम वापस लिए जा सकेंगे। पार्टी के 17वें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कल होगी। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने कल संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2027 में देश में पहली बार कराई जाएगी डिजिटल जनगणना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 2 चरणों में पूरी कराई जाएगी प्रक्रिया, दूसरे चरण में होगी जातिगत गणना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में रवि सत्र की किसान पाठशाला का किया शुभारंभ। 29 दिसंबर तक सभी जनपदों में किसान पाठशाला का होगा आयोजन। SIR अभियान की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने UP समेत 8 प्रदेशों में तैनात किए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक। और काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु से 6ठा प्रतिभागी दल पहुंचा काशी। 5वें दल के सदस्यों ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में लगाई डुबकी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।